the conference center.
Son lecha har ke temple square ke sammelan kendra se Yeshu Mashi ka girjagar antim dino ke santo ki 180th varshik sama sammelan hai jiske bhashan karta girjagar ke maha adhikariyon aur maha pad adhikariyon mein se chune gaye hai. Mormon Tabernacle choir dwara is sabha ka sangeet pradan kiya jayega. Girjagar ke sadasya aur adhikari duniya ke sabhi bhagon se aaye taki apne girjagar netaon se salah aur aadesh prapt kar sake. Bonneville Distribution dwara is prasaran ko janta seva ke roop mein purti ki gayi hai. Any recording, reproduction mana hai.
Dieter F.
Ugdop, pratham adhyaksha, taki dusre salahkar is girjagar ke is sabha ko sanchalan karenge. भाइयों और बहनों, हम आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों का 180th आदमवार्षिक महासंचलन के इस पहले बैठक में. और एक खास स्वागत करते हैं उन सदस्यों और दोस्तों को जो यहाँ इस कॉन्फ्रेंस सेंटर और विश्वभर में जहाँ कहीं भी भाग ले रहे हैं. प्रधान थॉमस मॉन्सन जो इस संचालन सम्मेलन में नेतृत्व करता है ने बताया है कि मैं इस को संचालन करूं. हम आभारी हैं महाअधिकारियों और महासहायक अध्यक्षताओं की उपस्थिति का इस सम्मेलन में. इस बैठक का संगीत टैबरनकल क्वायर द्वारा प्रदान किया जाएगा मैक वुलबेक और रिचर्ड एलियट के निर्देशन में और ऑर्गन पर होगा एंड्रयू अंसवर्थ. कायक मनली ने इस बैठक का शुरुआत किया स्वीट इज द वर्क गाकर और अब हमें देंगे कम ई चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड. एल्डर योशिहिको किकुची जो 70 के है द्वारा फिर प्रार्थना बोले जाएगा.
Holy
Heavenly Father,
हे हमारे पवित्र पिता परमेश्वर, हम आपको अपना हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आपके पुत्र यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रेसिडेंट थॉमस मॉन्सन के लिए और उनके पत्नी के लिए। हम चाहते हैं कि आप उसको उनको आशीर्वाद दें और कि इस कॉन्फ्रेंस में जो हम सीखेंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा आज इस कॉन्फ्रेंस समय हमारे साथ रहे और कि हम जो सुनेंगे उसको निभाएंगे और कि हम कोशिश करें कि हम अच्छाइयों को अपनाएं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके पवित्र आत्मा इस कॉन्फ्रेंस के समय हमारे साथ रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
Brothers and sisters, we shall now be pleased.
अब हम हमारे प्यारे भविष्यवक्ता प्रधान थॉमस मॉन्सन को सुनकर प्रसन्न हो गए। उनके टिप्पणियों के बाद गायक मंडली गाएगा The Sunshine in My Soul Today। गीत की समाप्ति पर प्रधान बोयट के पैकर, जो 12 के प्रसाद के प्रधान है, हमसे बातें करेंगे और उनके बाद आएंगे बहन जूली बी बैक, जो सहायक संस्था के महाअध्यक्षता है। उनके टिप्पणियों के बाद बिशप कीथ बी मैकमोलन, जो प्रिसाइडिंग बिशप रिक के है, हमसे बातें करेंगे।
How good it is,
कितना अच्छा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम एक बार फिर इस फिर साथ इकट्ठा हुए हैं। ये सम्मेलन गिरजा की स्थापना से 180 वर्ष बाद हो रहा है। हम कितने आभारी हैं भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के लिए, जिसने सच्चाई को तलाशा, जिसने उसे पाया और जिसने प्रभु के निर्देशन में सुसमाचार को पाया और गिरजा को घर को आयोजित किया। 1830 के उस दिन से गिरजाघर की बढ़ती हो रही है। वो हर वर्ष और ज़्यादा लोगों की बदल रहे हैं और पूरे धरती में फैल रहा है, जैसे हमारी मिशनरी सेना उन्हें ढूंढते हैं। एक बार फिर हम गिरजाघर के सदस्य को आमंत्रित करते हैं, नए सदस्यों और जो गिरजाघर में फिर आने की कोशिश कर रहे हैं, कि वो उनसे प्रेम से पेश आए और उन्हें घर पर होने जैसा एहसास दिलाए। धन्यवाद मेरे भाई और बहनों तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा के लिए यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रति। धन्यवाद उन कार्यों के लिए जो तुम अपने वोट्स और स्टेक्स में अपने स्टेक और जिलाओं में कर रहे हो। तुम अपने इच्छा से और अच्छी तरह सेवा प्रदान करते हो और ज़्यादा अच्छी अच्छाइयाँ करते हो। प्रभु तुम्हें आशीर्वाद दे। हमारी पिछले मुलाकात से दुनिया में गिरजाघर ने जरूरी ह्यूमैनिटेरियन सहयोग देना जारी रखा है। पिछले 3 महीने में ही ह्यूमैनिटेरियन सहयोग फ्रेंच पोलिनेशिया, मंगोलिया, बोलिविया, पेरू, एरिजोना, मेक्सिको, पोर्चुगल और युगांडा और अन्य कई इलाकों में भी प्रदान किया है। हाल में हमने हैती और चिले में सहयोग दिया है। हम अपने गिरजाघर सदस्यों के लिए अपना प्रेम प्रकट करते हैं, जिन्होंने घोर प्रति विपत्तियों का सामना किया है। तुम हमारे प्रार्थनाओं में हो। हम तुम सबको अपना प्रेम प्रकट करते हैं। तुम्हारे सहयोग प्रदान करने की इच्छा के कारण तुम्हारे ह्यूमैनिटेरियन कोशिशों में अपने सदस्य साधनों और कई मौकों पर। ये वर्ष हमारे ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम का 25th वर्ष है, सबसे जब से वो हमारे कल्याण का कोशिश का भाग बना है। कितने लोगों का सहयोग पहुंचती है। हम सदा कोशिश करेंगे कि विपत्तियों के स्थल पर हम पहले पहुंचे जहां कभी वो भी वो घटे। गिरजाघर बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ते रहेगी। मंदिरों का निमंत्रण बढ़ती का संकेत है। हाल में हम एक नए मंदिर की घोषणा की जो पैशन यूटा में बनाया जाएगा। हमने भारी बदलाव की भी सूचना दी जो ओग्डन उगना मंदिर में हुआ। आने वाले 3 महीनों में हम नए मंदिरों का सम्पारण करेंगे। वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया, गीला वैली एरिजोना और क्यूबा शहर फिलीपींस में इसी वर्ष बाद में आने मंदिर का सम्पारण या फिर से सम्पारण होगा। हर वर्ष कई मिलियन की संख्या में धर्म विद्या पूरी की जाती है मंदिरों में। हम विश्वासी रहे और अच्छाइयों को अपनाएं। तुम में से कई लोगों को मालूम होगा कि अक्टूबर के सम्मेलन के कुछ ही दिनों बाद मेरी प्रिय पत्नी फ्रांसिस गिर पड़ी थी, जिससे उसका कमर और एक भाग टूट गया था। 2 सफल सर्जरी और अस्पताल में है और हफ्ते बढ़ाने के बाद वो घर लौटने की काबिल हुई। वो पिछले शनिवार को जवान महिलाओं की महासभा में जा सकी। वो मेरा साथ धन्यवाद है देने रही है स्वर्ग पिता को और तुमको तुम्हारे प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए उसके लिए। मैं उससे भी बहुत प्रेम करता हूँ।
Was one of the missionaries in the home of her father, and who, with his companion, brought the entire family into the church. When I first called on Francis,
पिता के द्वारा कई लोग गिरजा में सदस्य बने हैं। मैं बहुत आभारी हूँ उनके पिता के कारण, जो उन्होंने मुझे सिखलाया सुसमाचार के विषय के बारे में।
Grandfather's brother, and then her father wept, and he said he was one of the missionaries who brought the gospel to my mother and father and
मेरे पिता ने महसूस किया जो मिशनरीज ने किया था और प्रचार किया था सुसमाचार के विषय में और मेरे परिवार में लाए और जब मैं अपनी पत्नी को पहली बार मिला था उनके पिता ने मुझे एक मेरे चीक में किस किया था। वो मुझसे बहुत खुश था। मेरी पत्नी मुझसे इसके विषय में बातें करेगी कि क्यों मैं ये बतला रहा हूँ। वह एक बहुत अच्छी पत्नी है। मैं जानता हूँ कहेगी कि और कुछ और मैं ना बोलूं। हम यूनिवर्सिटी साथ में थे। हम एक दूसरे से प्रेम करते थे और हम हमेशा साथ थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा,
So I joined the Navy.
आप अच्छे लगते हैं जब आप आर्मी में की यूनिफॉर्म में रहते हैं, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन की। लेकिन वह मेरे साथ है और धन्यवाद देते हैं आप सभी को और आपके प्रार्थनाओं के लिए जो आपने हम लोगों के लिए करते हैं। अब हम यहाँ आए हैं आदेश और प्रेरणा के लिए। हम तुम्हें स्वागत करते हैं जो इस गिरजाघर में नए हैं, अन्य लोग जो मुसीबतों में हैं। हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। कई संदेश जो विभिन्न समाचार के विषय पर है अगले दिनों में तुम्हारे साथ बांटी जाएगी। वो पुरुष और महिलाओं जो तुमसे बातें करेंगे वो तुम्हें बतलाएंगे। ये मेरा प्रार्थना है कि उनकी आत्मा हम में समा जाए जब हम सुनेंगे कि यही मेरा प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से जो हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता है. आमीन. मैं परिवार से बात करता हूँ, खास करके पिताओं के लिए. वर्षों पहले हमने प्रधान हेरल बिली के निर्देशक में प्रस्विक संभाग शुरू किया. उस समय प्रधान थॉमस मॉन्सन ने कहा था, आज हम कई तरीकों के पाप, दुर्चार और बुराई से गिरे हैं जो सदा हमारे समय रहते हैं. युद्ध में जिसकी योजना है साथ हम लड़ते हैं, ये युद्ध की योजना प्रभु के प्रेरणा और प्रकृति प्राप्त हुआ है. उस विषय के दौरान गिरजाघर के पूरे संचालन में बनावट में बदलाव आया. सदस्यों के बीच के उद्देश्य और रिश्तों को फिर से लिखा गया. मूल शब्द और संबंध और बदलाव के वर्षों में था प्रोहिती. प्रधान मॉन्सन ने गिडियन के विषय में भी बातें की. पुराने नियम का एक नायक गिडियन को इजरायली की सेना की अगुवाई करने के लिए चुना गया था जो हजारों के संख्या में थे, मगर उन सभी में से उनसे सिर्फ 300 आदमियों को चुना. गिडियन के पास एक दिलचस्प तरीका था रंग रूप चुनने का. जब आदमी पानी पी रहे थे एक नदी में से, कई लोग नीचे झुक कर पीने लगे. उन लोगों को उसने नहीं चुना. कुछ लोगों पानी अपने हाथों में बांटते पीते, इस तरह से उन्हें चुने गए। हम जीते हैं इस समय में युद्ध की चर्चाएं और भूकंप घट रही है। भविष्यवाणी अनुसार पूरी धरती वो सभी अच्छी और धार्मिक चीज़ों को नाश करता है। उस सब चीज़ों के मिलने में हमारे पास बहुत निश्चय एहसास है क्या आने वाले है कि विषय में। गिडियन के छोटी सेना सफल हुई क्योंकि जैसे अभिलेख बतलाए हैं, ये पूर्ण जन्म का विश्वास शुरू हुआ था पिता और पुत्र के प्रकट होने से बालक जोसेफ स्मिथ के सामने। फिर मोरनाई ने जोसेफ को दिखाया कहाँ बुक ऑफ मोमन के पट्टियाँ है। जोसेफ को उनका अनुवाद करने की शक्ति दिया गई। अनुवाद के द्वारा जोसेफ और काउनी ने बपतिस्मा के बारे में पढ़ा। उन्होंने प्रार्थना की जहाँ के लिए क्या करना है। उनके सामने प्रकट हुआ स्वर्गदूत जॉन द बैप्टिस्ट देने वाला था। उनके एरोनिक प्रिस्टूड प्रदान किया और उसके द्वारा से साबी चाबियां उनके मिला पश्चाताप और बपतिस्मा पापों के क्षमा के लिए। पीटर जेम्स और जॉन जो प्रभु के सबसे करीब थे उनके देखभाल के द्वारा इसके बाद प्रकट हुए जोसेफ और ओलिवा को ऊंचे प्रिस्टूड दिया। ये वो पवित्र प्रिस्टूड है जो परमेश्वर के पुत्र के कायदा अनुसार है। प्रिस्टूड जैसा धर्मशास्त्र बतलाता है मलकेज़ेदेक के नाम से होने को था जो महान पुरोहित है। ये प्रिस्टूड फिर उनका हर बन गया। उन्होंने समाचार को सभी राष्ट्रों तक ले जाने की आज्ञा दी गई। यीशु मसीह के समाचार जीने कभी भी आसान नहीं है। ऐसा करना आसान नहीं था जब वो जीवित थे और ऐसा करना गिरजा का शुरुआत के दिनों में भी आसान नहीं था। शुरुआत दिनों में संतों के भयानक तकलीफाएं थे। 180 वर्ष हो गए हैं प्रिस्टूड के प्रस्थापित करने पर। हमारे पास लगभग 14 मिलियन सदस्य हैं आज। फिर भी हमारे संख्या कम है जब हम कई मिलियन लोगों को तुलना करने में करें। मोमन धर्मशास्त्र आने के बाद हम कम संख्या में ज़्यादा नहीं है मगर हमारे पास प्रिस्टूड की शक्ति है। भविष्यवक्ता निफाई ने लिखा और ऐसा हुआ कि मैंने परमेश्वर की महिमा की गिरजाघर देखा जिसके सदस्य बहुत कम थे। फिर भी मैंने देखा कि महिमा की गिरजाघर जो कि परमेश्वर के संत थे का गिरजाघर भी सारे जगत से ऊपर फैला हुआ था परंतु उनके राज्य धरती पर छोटा था। प्रधान जोसेफ फील्डिंग स्मिथ ने कहा जबकि ऐसा कहा जा सकता है कि हम संख्या में कुछ कम हैं दुनिया की तुलना में अभी भी हमारी तुलना इससे की जाती है जैसे भरी हुई उधारकर्ता ने बताया था जो आगे चलने में पूरी विश्वास का उठाएगा। हम सकते हैं और समय आने पर यकीन ला सकते हैं पूरे मानव जाति पर। वो जान जाएंगे कि हम कौन हैं और हम क्यों हैं।
That is not only possible, but certain.
लेकिन हम ये कर सकते हैं शैतान के। कुछ वर्ष पहले मैंने एक भाषण दिया जिसके शीर्षक था क्या हर एल्डा को जानना चाहिए। एक परिचार किताब प्रिस्टूड शासन के सिद्धांत पर बाद में जब उन्होंने मैंने शिक्षा बदल दिया बातों में क्या हर एल्डा को जानना चाहिए और हर बहनों को भी। जब तक हम माताओं और पिताओं और बहनों के ध्यान को ना हासिल करेंगे जिनका अपना पिताओं पुत्र और भाइयों पर प्रभाव है हम प्राप्त नहीं कर सकते। पुरोहित महान शक्ति खो देगी अगर बहनों को है। प्रिस्टूड वो अधिकार है शक्ति जो परमेश्वर ने पुरुषों को दिया है इस धरती पर उनके लिए कार्य करने के लिए। हमने बहुत अच्छा किया है प्रिस्टूड का अधिकार बांटने में. हमने प्रिस्टूड अधिकार लगभग सभी जगह स्थापित किया है. हमारे पास एल्डर का प्रश्चित और उच्च प्रिस्टूड है विश्व भर में. प्रिस्टूड के पास वो बल नहीं है उसके पास होने चाहिए होगा नहीं जब तक प्रिस्टूड की शक्ति परिवार में मजबूत ना हो जाए. प्रधान हेरल्बी ने घोषणा की, मेरे लिए ये स्पष्ट है कि गिरजाघर के पास कोई चुनाव नहीं और उसके पास कभी था भी नहीं, मगर परिवार को सहायता देने में कुछ ज्यादा करने के लिए उसके दिव्य लक्ष्य को करना चाहिए. अंतिम दिनों के लिए संतों के घरों में जीवन के स्तर को सुधारने में सहायता करने के लिए जितना जरूरी हमारे कई प्रोग्राम्स. और प्रधान जोसेफ स्मिथ ने यह घोषणा घर में पुरोहित के विषय में, घर में संचालन करने का अधिकार हमेशा पिता का ही होता है और सभी घरेलू मामले में और पारिवारिक समस्या में कोई और बदायी अधिकार नहीं. इस सिद्धांत की उदाहरण के तौर पर एक ही घटना शायद प्राप्त सही. कभी कभी ऐसा होता है कि एल्डरों के बुलावे जाता है और परिवार के सदस्यों के सेवा करने के लिए. इन एल्डरों में शायद शामिल होंगे स्टेक के प्रधान. पिता वहाँ है, वो उसका है और उसका जिम्मेदारी है उसके चुनना चाहिए कौन ठेल छोड़ेगा और कौन प्रार्थना बोलेगा. और उसके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि घर में गिरजाघर के अध्यक्ष करने वाले अधिकार है आशीर्वाद को अपने घर में पूरा करने के लिए. अगर पिता नहीं है, माता को मौजूद अधिकार करने वाले से आगे करनी चाहिए कि वो इस कार्य को करें. पिता मेज पर प्रार्थना के समय अध्यक्ष करता है और अपने परिवार के जीवन के लिए निर्देश देता है चाहे जो भी मौजूद हो. वियतनाम के युद्ध के दौरान हमने कई खास सभाओं के गिरजाघर के सदस्यों के लिए जिन्हें सेना की सेवा के लिए बुलाया गया था. शिकागो में एक ऐसी सभा के बार मैं प्रधान हेरल्ड विली के करीब खड़ा था जब उत्तम जवान अंतिम दिनों के संत के नरली के बताए कि छुट्टी पर आया और अपने घर घूमे के लिए और फिर उसके पास आदेश है वियतनाम जाने के लिए. उसने प्रधान के आशीर्वाद मांगी. मैं से आशीर्वाद प्रधान ली ने कहा, तुम्हारे पिता को ये आशीर्वाद देना चाहिए. बहुत निराश लड़के ने कहा, मेरे पिता नहीं जानता आशीर्वाद कैसे दे सकते. प्रधान ली ने उत्तर दिया, घर जाओ मेरे बेटे और अपने पिता को कहो कि तुम युद्ध पर जा रहे हो और एक पिता को आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं उससे. अगर वो नहीं जानता हो उससे बताओ कि तुम एक कुर्सी पर बैठोगे, वो तुम्हारे पीछे खड़ा होकर और अपने हाथों तुम्हारे सिर पर रखेगा और आशीष देगा. ये जवान सैनिक दुखी होकर चला गया. करीबों दो वर्ष बाद मैंने उससे फिर मिला. मुझे याद नहीं कहा उसने मुझसे वो अनुभव दिया और कहा, मैंने वैसा ही किया जैसे बताया गया था. मैंने अपने पिता को समझाया कि मैंने कुर्सी पर बैठूंगा और उसे मेरे सर पर हाथ रखना होगा. प्रिस्टूड के शक्ति हम दोनों ने समा गया. वो एक शक्ति और सुरक्षा थी युद्ध के कठिन महीनों में. और एक समय में एक दूर के शहर में था. एक सम्मेलन के बाद हम माताओं को चुन रहे थे और नियुक्त कर रहे थे. जब हम समाप्त स्टेक प्रधान ने पूछा, क्या हम एक जवान पुरुष को एल्डर के चुन सकते हैं जो मिशन क्षेत्र के लिए चाहता है. यहाँ जवाब हाथ था. जब जवान पुरुष आगे बढ़ा उसने तीनों भाइयों को इशारा किया कि वैसे करें जैसे वो प्रिस्टूड बनने के अवस्था होंगे. पीछे खड़ कर मैंने एक लड़के को जैसे सकता और मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पिता यहाँ? उसने पूछा, हाँ. मैंने कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारे नियुक्त करेगा? और उसने कहा, नहीं, मगर मैंने बोला कि हाँ वो करेगा. और मैंने कहा, जवान पुरुष तुम्हारे पिता तुम्हें नियुक्त करेगा और तुमको प्रिस्टूड देगा. पिता आगे बढ़ा. शुक्र मानो कि वो एक एल्डर था. अगर वो नहीं होता, तो जल्द बन जाता सेना नहीं और उसके कभी कभी ऐसी चीजों गिरजा में भी होती है। पिता नहीं जानता था कि कैसे पुत्र को नियुक्त करने। मैंने अपने बाहों चारों ओर उसके डाली और मदद की। जब खत्म हुआ जवान पुरुष एक एल्डर था। फिर कुछ आश्चर्य हुआ। पूरी तरह से बदले हुए पिता और पुत्र ने एक दूसरे को बाहों में ले ली। एक स्पष्ट था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। एक पिता ने अपने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने अपने बेटों को आशीष नहीं दी। सोचो अगर कोई और आशीष देता, अगर जो एक अपोसल, जबकि प्रिस्टूड आज दुनिया भर में है, हम सभी एल्डर को ऊंचे प्रिस्टूड को बुलाते हैं। प्रिस्टूड रखने वाले सभी लोगों को कोई खड़ा होता है। गिडियन की तरह छोटे मगर शक्तिशाली ताकत 300 की अपने स्थान पर। हम अब एल्डर को उसके पुरोहित प्रिस्टूड पिता के शक्ति के द्वारा। प्रभु ने कहा है कि दुनिया के कमजोरों चीजों सामने आएगी और बलवान और शक्तिशाली चीजों को तोड़ जाएगी। भौस्विकता निफाई ने कहा, परमेश्वर के महिमा की शक्ति की वो महिमा की गिरजाघर के संतों के ऊपर और परमेश्वर के वादों के आए, और कहा कि वो सदस्य के हथियार के हुए परमेश्वर के शक्ति में संभवमान हो रहे हैं। हमें सभी की आवश्यकता है। थके हुए से पिता असली और जो भी दोष भरी हुई पश्चाताप और क्षमा द्वारा पुनस्थापित किया जाए। हमें आगे बढ़ना है। प्रिस्टूड की महान शक्ति में आत्मा विश्वासी एक शक्ति और प्रस्थान का सृष्ट है, जो हम जाने कि कौन और हमारे पास क्या है और ये कार्य में क्या करना है। प्रभु ने कहा कि वो मैं बंधा हूं, अगर जो तुम वो कार्य करो, अगर जो तुम वो काम नहीं करो, तुमको वो वादा नहीं मिलेगा। जिन घरों में प्रिस्टूड नहीं, उनकी देखरेख और सेवा पुरोहित की। इस तरीके से कोई भी परिवार गिरजाघर में कोई आशीर्वाद के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। एक परिवार एक छोटी बुद्धि डेनमार्क में पैदा हुए थे। उनके था उसका जवान बेका हुआ था। पिछले कुछ वर्षों से वो घर पर रहे थे। आंसू भरी आंखों से उसने निवेदन की, माँ तुम्हें जीना है, माँ तुमको मरना नहीं है। उसने कहा, माँ तुमको नहीं जा सकती, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। वो छोटी माँ ने अपने पुत्र को देखा और अपने टूटे डेनिश स्वर में कहा, बट तुम्हारा शक्ति कहाँ है। पॉल ने कहा कि ये सब अपोजल्स और प्रोफेट्स के द्वारा बनी हुई, जिसमें यीशु मसीह सबसे ऊंचा है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु ने पवित्र मंदिर में बांधती है, जिसमें तुम्हें आत्मा द्वारा परमेश्वर में होने के लिए है, कि प्रभु के कार्य चलता रहे साल ही नहीं, सवाल नहीं। प्रिस्टूड का अधिकार हमारे पास है। इतना सब जो हमारे प्रशिक्षण तौर के संपत्ति किया गया, अब हमारी जिम्मेदारी है कि प्रिस्टूड की शक्ति को काम में लाने के गिरजाघर में। प्रिस्टूड में अधिकार आता है और नियुक्त से। प्रिस्टूड में शक्ति आती है विश्वासी और आशा से। हमें कार्य से शक्ति को और बनाना है। अब पिताओं, मैं आपको याद कराऊंगा आप नियुक्ति के पवित्र प्रकृति के बारे में। तुम्हारे पास प्रिस्टूड की शक्ति है सीधा प्रभु के पास से अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए। ऐसा समय आने जब इस चीज तुम्हारे परिवार और की नियुक्तियों के बीच होगा। तुम प्रभु से, शैतान हमारे गिरजाघर संभालने में बड़ा नहीं बाधा डाल रहा है, सिर्फ कभी कभी, सब मिलकर जैसे चाहे, मगर वो और उसके चलाने लगातार कोशिश कर रहे हैं कि और परिवार पर संकट डाले। सुसमाचार के सिद्धांत और कानों द्वारा आनंद प्रोहित के वचन में सुरक्षित रूप से सील होगा। हर एक कानून और सिद्धांत और शक्ति, हर विश्वास, हर चुनाव और नियुक्ति, हर वचन, हर भाषण और हर प्रभु भोज, हर सलाह और सुधार, सीलिंग, नियुक्तियों, मुक्तियों, सेवन, इस सब के लक्ष्य में शामिल है व्यक्ति और परिवार के संपूर्ण के लिए, क्योंकि प्रभु ने कहा कि ये मेरा कार्य है और मेरा महिमा है। मानुष जाति का अमरशीलता और आनंद जीवन देना, और ऐसा ही होगा कि मैं इस प्रस्तुत की, हमको डरना नहीं है। अगर जो हम डरेंगे तो हमारा विश्वास कम होगा। हम मैं बयान देता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
In the past year,
मैंने संतों के महिलाओं से बहुत सारे देशों में मुलाकात किया। चुनौतियाँ ये बहनें अनुभव करती हैं, वो लंबी और शांत स्वभाव की है। पारिवारिक कठिनाइयाँ, आर्थिक परेशानियाँ, विपत्तियाँ, दुर्घटनाएँ और बीमारी है, और बहुत कम शांति और खुशी है। मध्यम के संदेशों देश भर के लिए होने के अलावा कोई इतना धनी नहीं, इतना सुंदर नहीं, इतना चालाक नहीं जो मरणशील जीव के कठिनाइयों को रोक सके। जो सवाल बहने पूछती है वो गंभीर और सोचने लायक होती है। वो भविष्य के विषय में बेचैनी व्यक्त करती है, अनजान आशा के लिए दुख, कुछ विधवा और आत्मीय योग्यता के एहसास कम हो जाता है। मेरे अंदर एक महान गवाही परमेश्वर की पुत्रियों के महत्व के विषय में आई। बहुत कुछ उन पर निर्भर है। मेरे भेंटों में बहनों के साथ मैंने ये महसूस किया कि और भी बहुत जरूरत है विश्वास और व्यक्तिगत धार्मिकता को बढ़ाने की। किस तरह कोई अपने विश्वास को बढ़ाता है, परिवारों को मजबूत बनाता है और मदद प्रदान करता है। किस तरह हमारे दिनों में एक महिला अपने सवाल का जवाब ढूंढती है और मजबूत बनी रहती है और निडर खड़ी रहती है घोर विदोर और मुसीबतों में। एक अच्छी महिला को पता है कि उसके पास बहुत शक्ति, समय या मौका नहीं सारे लोगों के लिए चिंता करने के लिए या सारे लायक कार्य करने की जो उसका दिल चाहता है। जिंदगी में शांति नहीं कई महिलाओं के लिए, और हर दिन हजारों कार्य होते हैं करने के लिए, लगभग सभी जरूरी होते हैं। एक अच्छी महिला को हर समय बेकावे में आने में अपनी जिम्मेदारियों से दूर और उड़ कि वो और भी ज्यादा साधारण जिंदगी और आजादी की हकदार है। मगर व्यक्तिगत प्रकट होने की क्रिया से वो सही तरीके और उस अच्छी तरह से इस जीवन को पूरा कर सकती है। व्यक्तिगत प्रकट होने की क्रिया के लिए योग्य होने, उसे हासिल करने और उस पर अमल करने की क्षमता हो, वो सबसे आवश्यक निपुणता है जो इस जिंदगी में अपनाई जा सकती है। प्रभु के आत्मा के लिए योग्य होना आत्मा के प्रति इच्छा से शुरू होता है और कुछ हद की योग्यता चाहता है। आदेश को निभाने से, पश्चाताप से और दोबारे लेने उन वादों को जो बपतिस्मा पर लिए गए थे पहुंचाता है उन आशीर्वादों तक, जिससे कि प्रभु की आत्मा हमारे पास सदैव रहेगा। मंदिर के वादों को बनाने और निभाने से और भी धार्मिक बल और शक्ति महिलाओं के जिंदगी को मिल सकती है। कई जवाब कठिन सवाल को धर्मशास्त्र से मिलती है, क्योंकि धर्मशास्त्र बतलाएगी कि प्रकट होने की क्रिया क्या है। जो दृष्टि धर्मशास्त्र से मिलती है समय पढ़ने पर पड़ती है बढ़ने पर पड़ती है, तो यह जरूरी है कि धर्मशास्त्र में हम कुछ समय हर दिन बिताए। प्रकट होने की क्रिया हमें मिल सकती है जब हम सही काम को करेंगे, जब महिला उसी तरह पोषण करती है जिस तरह मसीह ने किया। शक्ति और शांति आती है जब मदद की जरूरत होती है, जैसे कि महिलाओं को आत्मा से मदद महसूस होती है, चाहे वो थकी ही क्यों ना हो। हल्ला मचाते बच्चों की और ध्यान देते समय, मगर वो आत्मा से दूर हो सकती है जब वो बच्चों के साथ गुस्से में पेश आए। सही स्थान पर होने से मार्गदर्शन प्राप्त होती है। वो अतल प्रयास चाहती है घबराहट को दूर करने के लिए, मगर आत्मा का प्रतिकारण होने से ये संभव है विरोधियों पर जीत हासिल करना और मुसीबतों के दिनों में विश्वास को कायम रखना। व्यक्तिगत प्रकट होने की क्रिया हमें समझाती है हमें क्या करना चाहिए। हर दिन विश्वास और व्यक्तिगत धार्मिकता परिवारों और घरों को मजबूत करने के लिए। आत्मा में अपने विश्वास को रखना जो सच्चाई से करती है, जो विनम्रता से चलेगी, जो सही न्याय करेगी। ये भी बतलाया गया है कि ये आत्मा हमारे बुद्धि को बतलाएगी, हमारे आत्मा को खुशी से भर देगी और मदद करेगी सारे चीजों को जानने के लिए जो हमें करना है। ईश्वर ने अपने ज्ञान से सहायक संस्था को बनाया है अपनी पुत्रियों के अंतिम दिनों के मदद के लिए। जब सहायक संस्था अपने प्रेरणा से कार्य को करती है, वो महिलाओं को दुनिया के मुसीबतों से ऊपर उठाती है और बाहर निकालती है और उन्हें ऐसे जीने के रास्ते पर ले जाती है जो उन्हें तैयार करता है अनंत जीवन के आशीर्वाद के लिए। इस संस्था का मुख्य जिम्मेदारी बहनों को मदद करना है, उनके विश्वास और व्यक्तिगत धार्मिकता को बढ़ाने के लिए, परिवारों और घरों को शक्तिमान बनाना और उनका ढूंढना और मदद करना जिन्हें जरूरत है। सहायक संस्था के द्वारा महिला सवालों के जवाब को प्राप्त कर सकती है और आशीर्वाद प्राप्त कर सकती है सारे बहनों के साथ में मिलने धार्मिक शक्ति से। सहायक संस्था ईश्वर के पुत्रियों की सच्चाई और अनंत स्वभाव को मान्यता देती है। जब एक लड़की सहायक संस्था में आगे बढ़ती है या जब एक महिला गिरजाघर में बपतिस्मा लेती है, वो एक बहनापन का भाग बनती है जो उसे मजबूत करती अनंत जीवन की तैयारी में। सहायक संस्था में दाखिल होने का मतलब है कि एक लड़की को अब भरोसा किया जा सकता है और गिरजाघर में महत्वपूर्ण दान देने के लिए उस पर निर्भर हो सकता है। एलाइजा आर्सनो ने ये कहा बहनों से, हम औरतें चाहते हैं सभी कार्य में न सिर्फ उस शब्द के जैसे जो दुनिया देखती है, मगर ईश्वर और पवित्र जीवन के लायक साथियों की तरह। एक स्थापित की गई हैसियत से हम एक दूसरे को सिर्फ अच्छा काम में ही नहीं, मगर अपने आप को साफ रखने में भी, और चाहे कम या ज्यादा आगे बढ़े और अच्छे कार्य को करने के लिए मदद करें, वो वही होंगे जो ईश्वर के राज्य में इस अच्छे स्थान को भरेंगे। महिलाओं को महिलाओं की तरह होना चाहिए और शिशु की तरह नहीं, जिन्हें हर समय देखभाल करना और सुधारना जरूरी है। हमें पता है कि ईश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली है और कोई आशा या चाहत नहीं जो ईश्वर ने हमारे दिलों में सच्चाई से नहीं डाला, जिससे पहचाना नहीं जाएगा। और जो सबसे अच्छी चीजें हम अपने और दूसरों के लिए कर सकते हैं, वो है अपने आप को साफ रखना। अच्छी महिलाएं हमेशा जानना चाहती है कि वो आगे बढ़ रही है या नहीं। दुनिया में जहां सफलता का माप हमेशा नजर नहीं आती, ये जरूरी है कि प्रशंसा और पुष्टि सारी स्रोत से ढूंढे। प्रिशमय गोस्कपल में पाया गया लिस्ट को दोहराते हैं, हम सही कर रहे हैं जब हम यीशु मसीह के तरीकों के अपनाते हैं और उसके सुसमाचार को पूरे तरह से निभाते हैं। हम सही करते हैं जब हम अपने आप को ढूंढ कर सही करने की कोशिश करते और सही करते हैं। हम सही करते हैं जब हम विश्वास और व्यक्तिगत धार्मिकता को बढ़ाते हैं, परिवारों और घरों को मजबूत करते हैं और ढूंढते हैं उनके मदद करते हैं जिन्हें जरूरत है। हम अच्छा महसूस करेंगे कि ईश्वर हमसे खुश है जब हम आत्मा को हमारे कार्य को करते महसूस करेंगे। शांति, खुशी और आशा उन्हें मिलती है जो सफलता को सही माप से देखेंगे। जोल की किताब में एक प्रतिकारण ये बतलाती है कि अंतिम दिनों में ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे और ईश्वर पर अपने सेवक और अपने दासियों पर उधेलेगा। प्रधान किम्बल ने इस भविष्यवाणी को दोहराया जब उसने कहा, बहुत सारे जरूरी बढ़ती जो गिरजाघर में आ रही है अंतिम दिनों में आएगी, क्योंकि बहुत सारे दुनिया भर की अच्छी महिलाओं जिनमें अक्सर अंदर की आत्मा ज्यादा होती है गिरजाघर में ज्यादा नंबरों में चले आएगी। ऐसा होगा कि गिरजाघर की उधारनाएं नारियां आवश्यक शक्ति रहेगी दिनों गिरजाघर के संख्या की और धार्मिक बढ़ाती में अंतिम दिनों में। मैं एक गवाही देती हूँ कि यीशु मसीह का सुसमाचार सच्चा है। प्रभु अपने पुत्रियों पर निर्भर होता है कि वो अपने जिम्मेदारियों को निभाए जायोन के घरों को मजबूत और उसके राज्य को बनाने के लिए। जब वो व्यक्तिगत प्रतिकारण को ढूंढते और उसके योग्य होते हैं, ईश्वर अपने आत्मा को अपने दासियों पर इन अंतिम दिनों में उढ़ेलेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
यह एक दुख भरी दुनिया है। अनबन और विपत्ति सभी ओर है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यद्यपि मानव जाति खुद ही संकट में ना हो, प्राकृतिक विपत्तियां तबाही लाती है, जैसे व्यक्तिगत सामान की दुखियंत घटनाएं, जैसे झूठ, कठोरता और विश्वघात। हमारे दिन के विषय की सूचना देते हुए प्रभु ने कहा, स्वर्ग हिल सकता है और धरती भी, और बहुत मुसीबत मनुष्यों को के बच्चों पर आ सकती है, मगर मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। हमें इस वादा से बहुत छुटकारा मिल सकता है। यद्यपि विपत्तियां पूर्ण रूप से चट्टी पहुंचती है, हमारी जिंदगी की शक्ति वो हमारी जिंदगियों में हमेशा के लिए चटी नहीं पहुंचा सकती। होलन में वर्ल्ड वॉर टू के द्वारा सस्पर तीन भूम परिवार ने अपने घर को छिपने का स्थान बना लिया था। परिवार के चार सदस्य ने अपनी जिंदगी को खो दिया था, जिनको शहर शरण देने में कोरी तीन भून और उसकी बनी बहन बेस्टी ने अनजान रविंद्रब्रुक कंसंट्रेशन कैंप में बनियक बहने बताए। बेस्टी वहां गुजर गई, कोरी जी गई। रविंद्रब्रुक में कोरी और बेस्टी ने किया कि परमेश्वर सीखा कि परमेश्वर हमें मदद करता है। एक आदमी ने उससे पूछा, उसने उसे पहचान लिया था कि वो उस कैंप के एक बुरा सिपाही में से था। तुमने अपने बातों के द्वारा रविंद्रब्रुक का जिक्र किया था। उसने कहा, मैं वहां पर एक सिपाही था, मगर उस समय के बाद मैं एक क्रिश्चियन बन गया था। उसने समझाया कि उसने परिवार से क्षमा मांगी थी अपने बुरे कर्मों के लिए। उसने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, क्या तुम मुझे माफ करोगी? मैं मन में प्रार्थना करता हूँ, मेरे मदद करो। मैं अपने हाथ उठा सकता हूँ। मैं उतना कर सकता हूँ जो मुझे माफ करने का एहसास को देना। एक लड़की की तरह मशीन की तरह मैंने अपने हाथ को मुश्किल से उसकी ओर बढ़ाया। जब मैंने ऐसा किया और असंभव हुआ, मेरे खड़े में कंधे में बिजली शुरू हुई, हाथों में दौड़ी, हमारे जुड़े हुए हाथों में झटका लगा और फिर ये माफ करने वाली गर्मी मेरे पूरे शरीर में फैल गई। मेरे अनोख आँखों में आंसू लौट हुए। मैं तुम्हें माफ करता हूँ भाई, मैं रो पड़ी अपने पूरे दिल से। बड़ी देर तक हमने एक दूसरे के हाथों में कोल थमे रखे, पहले का सिपाही और पहले का कैदी। परमेश्वर के प्यार को मैंने कभी इस तरह नहीं महसूस किया। उनके लिए जिन्होंने बुराई को छोड़ दिया है और सच्चाई से जिंदगी गुजार रहे हैं, जो और अच्छाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं और परमेश्वर के नियमों को निभाते हैं, मुश्किलें और भी ज्यादा आसान हो सकती है। उद्धारकर्ता ने हमें दिखलाया, गेतसेमनी से क्रूस पर और कब्र में उसने जीत हासिल किया, जिंदगी और आशा हम सबके पास लाया। आज ऐसा उसने मरणशीलता में किया। वो हमसे कहता है, आकर मेरे पीछे हो लो। प्रेसिडेंट थॉमस एस मॉन्सन ने ये सिखला दिया। धर्मशास्त्र में ये प्रेरित शब्द हैं, हम सारे मुसीबत की समाप्ति को सुनते हैं, परमेश्वर से डरो और उनसे वादे को निभाओ। ये मनुष्यों की पूरी जिम्मेदारी है। वो चीज़ क्या है जिसे हम फर्ज कहते हैं? वो फर्ज जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ है जो हमें करना चाहिए और जो बनना चाहिए। ये एक नैतिक ज़रूरत है नियुक्ति के लिए व्यक्तियों और संस्थाओं से जो साथी सच्चा और फर्ज सही नहीं चाहता, मगर वो सावधानी चाहता है। ये वो है जो शुद्ध है। ये शक्ति ये उस स्थान के लिए नहीं रखती जाएगी। एक का फर्ज निभाना विश्वास का चिन्ह है। प्रधान मुनसन ने इसके बारे में कहा, सच्चे शब्द फर्ज को मैंने प्यार और देखभाल करता हूँ। यीशु मसीह का गिरजाघर के सदस्यों के लिए हमारे फर्ज का रास्ता हमारे वादों को निभाना है। किसके लिए और किसको हम वचन भरते हैं? पहले हमारे फर्ज का रास्ता परमेश्वर के लिए है। हमारा आनंद पिता वो मुक्ति की योजना का लेखक है। वो सच्चाई को बनाने वाला है, प्यार का तस्वीर और पाप से मुक्ति का कारण। प्रधान जोसेफ स्मिथ ने कहा, जो हमारे पास है वो परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। हमारे अंदर और बाहर हम सिर्फ मिट्टी का है ढेर है। जिंदगी बूढ़ी ज्ञान विचार समझने की शक्ति और सारे परमेश्वर की उपहारन है मनुष्य के बच्चों के लिए। वो हमें हमारी शरीर शक्ति और साथ में हमें बुद्धि का ज्ञान भी देता है। सब मनुष्य को अपने दिल के गहराई से महसूस करना चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद दे और उसके होने के लिए और जो सारे गुण जो वो जानता है। हमें परमेश्वर का आदर करना चाहिए। हमें अच्छा कर्म करने के लिए ढूंढना चाहिए दुनिया में। ये हमारा फर्ज है। कोई परमेश्वर के पिता का फर्ज नहीं निभा सकता अगर वो अपने फर्ज परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं करता। वो हमारा मुक्तिदाता है और हमारा राजा है। चाहे वो दो अलग जिस्म ही हो, वो कार्य में अलग नहीं है। एक के भक्ति के लिए दूसरे का आदर चाहिए, क्योंकि पिता ने नियुक्त किया है कि सिर्फ मसीह के नाम में और उसके द्वारा ही कोई अपना जिम्मेदारी को निभा सकता है। वो स्वर्ग का पिता खुश होता है, धरती शांत जो जाती है और ये दुनिया और अच्छी जगत बन जा सकती है। कैसे हम फर्ज का रास्ता जानते हैं और विपत्तियों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। ये सभी का सही रास्ता है जानने के लिए, ये सब के स्वर्ग का रास्ता है। पुरोहित पिता ने कहा, प्रभु की आंखें धर्मकों पर लगी रहती है और उसके कान उत्तर देने के लिए तैयार है। विनम्र सच्चा प्रेरित करना प्रार्थना हम सब के लिए है। कभी कभी मनुष्य को उलझन में डाला जाता है पूरे देखरेख और मुसीबत से। यीशु ने सिखलाया कि जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो, इसलिए तुम पिता से सदैव मेरे नाम पर प्रार्थना करो। तुम जो कुछ मेरे नाम पर पिता से पाने का विश्वास कर मांगोगे और अगर तुम्हारी मांग उचित रही तब तुम सुनो, वो तुम्हें दिया जाएगा। प्रार्थना का सफलता बनाने के लिए वो स्वर्ग के योजना के साथ चलना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें वो दिखलाता है जो हम चाहते हैं। इस प्रेरणा के मार्गदर्शन बिना तुम मानते हो और पाते हो। ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा मार्गदर्शन दे प्रार्थना के द्वारा। ऐसी प्रार्थना स्वर्ग के आशीर्वाद को लाती है, क्योंकि हमारे पिता मांगने से पहले जानता है कि हमें क्या आवश्यक है। आखिर में ये वही है जो वादा देती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मैं अपनी गवाही को देता हूँ कि हमारा फर्ज का रास्ता साफ तरीके से नजर आता है, पूरे विश्वास से और परमेश्वर में विश्वास से, आनंद पिता से और उसके पुत्र यीशु मसीह और प्रार्थना की शक्ति से। इस रास्ते पर सारे परमेश्वर के बच्चे सफर कर सकते हैं जो उसे प्यार करते हैं। जवानों के लिए ये व्यक्तिगत रूप से पाने और तैयारियों में आगे बढ़ते हैं। ये हर विश्वासी मुसाफिर को प्रभु की शक्ति प्रदान करती है, उसे दिन भर को मुसीबत से बचाता है। यीशु मसीह के and keep his commandments. और ये मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।
Brothers and sisters,
भाइयों बहनों, गायक मंडली और सब आप साथ मिलकर गाएगी, guide us, O thou great Jehovah. गीत की समाप्ति पर एल्डर विल्फर्ड डब्ल्यू एंडरसन जो 70 की है हमसे बात करेंगे, जिसके बाद हम एल्डर एम रसल बैलर्ड जो 12 के परिषद के है से सुनेंगे। गायक मंडली फिर गाएगी ही सेंट हिज सन।
This is the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Years ago, I visited.
कई साल प्रथम मैं नाउ इलिनॉइस घूमने गया था अपने परिवार के साथ. वहाँ हम नए संतों रहने के लिए स्थान ढूंढते आए थे. कई ने अपने घरों और अपने खेतों को खो दिए थे और कुछ ने अपने चाहने वालों को बड़ी हुई अत्याचार में. नाउ में वो इकट्ठा हुए एक नए और सुंदर शहर में, मगर अत्याचार और कठोर हो गए थे. और 1846 के द्वारा वो एक बार दोबारा अपने घरों को छोड़ने के इस समय ठंडे के बीच में वो अपने छुपे घड़ी में पाल स्ट्रीट पर खड़े होकर मिसिसिपी नदी के बर्फीली पानी को करने के लिए अपने समय के इंतजार करने लगे, जहां उनके अपने आगे का पता था. जब हम पाली स्ट्रीट पर उनके हालत को देख रहे थे, मेरे नज़र को उनके लड़कियों से बनी हुई सही पर पड़ी. जब हम हर एक मोहरे को अपने आश्चर्य से पढ़ रहे थे, हमने पाया कि उसके शब्दों में अशांति और हिम्मत कम नहीं हुए, मगर विश्वास और करने की शक्ति और खुशहाली थी. वे आशा से भर गई थी जो आशा शहर रीच में थी. ठंडे में सफर को शुरू करने के लिए जैसे मौत के बढ़ना, मगर हमने हमारे पास विश्वास था. हमने महसूस किया कि हम अंतिम दिनों में पहुंचे हैं. दौड़ाना कठिन हुआ. ये नए संतों वास्तव में बाहर थे, मगर वे इत्तेसार नहीं. उनके दिलों टूटे हुए थे, मगर उनके आत्मा शक्तिशाली थे और खुशी से मिलती है. वे किसी समारोह पर निर्भर नहीं. उन्होंने जाना कि विश्वास चाहे इच्छा से प्राप्त होती है. प्रभु यीशु मसीह में विश्वास और उसके अटल प्रायश्चित में उनमें अपने जिंदगी को स्थापित करने चाहिए. आज एक और प्रभावक संकटों ने इस पर अवश्य मुख्य बतलाया है. 12 तारीख जनवरी मंगलवार को हैटी देश में गंभीरता से भूकंप आया. भूकंप से मुख्य शहर पोर्ट ऑफ प्रिंस को बर्बाद कर दिया. उसका प्रभाव बहुत बुरा था. लगभग 1 मिलियन मानुष्य बेघर हो गए और 200,000 से भी ज्यादा मृत्यु घोषित हुए. जब उन्होंने बाहरी देशों की सहायता मिल रही थी, पोर्ट ऑफ प्रिंस को और भूख और प्रेरणा प्राप्त हुई. यह स्थान हैटिया गिरजा के थे अनुसार प्रेरणा से चलाने वाले संकल्प थे. संकटों के संदेश में शामिल थे दूसरे के संग. पोर्ट ऑफ प्रिंस के 2 स्टेक प्रधानों और 2 स्टेक के संतों के प्रधान और मिशन के प्रधान, जो 30 साल के उम्र में हैटी पोर्ट ऑफ प्रिंस मिशन के 74 पूरे समय के प्रचारक को संचालक करते थे. उसके सभी प्रचारक हैटिन थे और चमत्कार से उनने किसी को भी नई भूकंप में खोई. इन स्थानों प्रेरित के हैटियों में गिरजाघर के संतियों को दिया गया. इन दानों के लिए हैटियों की मनुष्य गंभीरता से धन्यवाद देते हैं. समिति के अनुमति द्वारा लगभग तुरंत डोमिनिकन रिपब्लिक से गाड़ियां बाहर कर सामान पहुंचे लगी. भूकंप के कुछ ही दिनों के द्वारा अनगिनत खाने के सामान, पानी को फिर पाने. पॉइंट ऑफ प्रिंस के और ही 9 गिरजाघर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा. एक और आशीर्वाद चमत्कार, भूकंप के कुछ ही हफ्तों द्वारा में वो 5,000 हैटियन के लिए और बसे जिनसे खाना मूल्य जरूरत पूरे हुए और आश्वास के पूर्ति हुई. फिर भी विश्वासी हैटियन संतों ने बहुत छेला. वो आशा से भरे हुए आने वाले विश्वास के लिए, जैसे 1846 में पहले कोई भरताओं की, उन्होंने दिलों भी टूटे मगर उनके आत्मा शक्तिशाली थी, वे भी प्रभु में विश्वास से मिलती थी। प्रॉफेट मोमन ने अपने आप को मुश्किल के संभावनाओं से दूर नहीं किया। उन्होंने कहा, अब मैं फिर से तुमसे आशा पर करता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि मसीह के प्रायश्चित से तुम्हें आशा कर सकती और ये उसके दिशे विषण से उससे तुम्हारे विश्वास करने होगी। इसलिए अगर एक व्यक्ति विश्वास करता है तब उसकी आशा भी करनी चाहिए। यीशु मसीह में विश्वास आशा मिलती है और वह पहले ही दुनिया में आश्चुक था और उसने विद्या को हमारा आंसू पोच देगा अगर हम सिर्फ उसके पास जाएंगे, विश्वास और उसके पीछे चलेंगे। कुछ जो इस समय आश्चर्य और हिम्मत नहीं महसूस कर रहे हैं तो ने सोचा कि कैसे संभव होगा कि आशा को दोबारा पाएं। अगर तुम उसमें एक हो, जानो कि आशा विश्वास का परिणाम है। अगर हम आशा बढ़ाएंगे तो हमें विश्वास बढ़ाना जरूरी है। सिर्फ मानना उद्धारकर्ता में विश्वास के लिए जरूरी नहीं। जो प्रॉफिट जेम्स ने पढ़ाया कि दोस्त आत्मा की विश्वास रहता आता है मगर सही विश्वास कार्य निर्भर है। शैतान और गिरजाघर की विश्वासी सदस्य में विश्वास का अंत हमें आगे का पालन करना के करना चाहिए। बाइबल डिक्शनरी में से हम पढ़ते हैं, चमत्कार विश्वास नहीं उत्पन्न करता है मगर यीशु मसीह का सुसमाचार में आज्ञाकारी होने से ज्यादा विश्वास बढ़ती है। दूसरा शब्दों में नित्य की विश्वास आती है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं की कोशिश करते हैं, अपने पापों की प्रायश्चित करते हैं और उद्धारकर्ता के आज्ञा का अपने पूरे वादों अनुसार पालन करते हैं, पवित्र आत्मा से हम यह महसूस करेंगे कि अनुमति मिलती है कि हमारे पर्वतमाताओं और पिताओं ने जैसे हमारा बकरे का चिंता कहा, मुसीबतों के अलावा अच्छा होने की भाव से बारे में जाता है और उनके साथ गाने को महसूस करते हैं, सब अच्छा है। उदास और डर जाने के श्रुति होती है, हम खुशहाली से भर जाते हैं और शांति मिलती है जब हम अपने विश्वास को आनंद योजना को लेख में रहते हैं। जब हम अपने विश्वास को संताल राजकुमार के बढ़ाते हैं। अभी हाल ही में हमारा मित्र कैंसर से बीमार गुजर गया। वो और उसके परिवार के लोग बहुत ही विश्वासी थे। यह देखना इतना प्रेरित था कि उनके विश्वास ने उनके मुसीबत के समय कैसा संभाला। वो अंदर से शांति में बने रहे और शक्ति प्राप्त किया। उनके अनुमति के परिवार के संदेश के पत्र मैं पढ़ता हूँ, उसके मृत्यु के होने से पहले मैं पढ़ता हूँ। कुछ दिन पहले विषय कठिन थी। पिछले रात जब हम पिताजी के खाट के पास परमेश्वर की आत्मा को महसूस किया और हमने सच्चा दिलासा देने वाली की तरह हमको शांति मिल गई। ये सबसे कठिनाई के समय था जब किसी ने कभी अनुभव किया मगर हमने ज्ञान से शांति को महसूस करते। हमारे स्वर्ग पिता ने ये वादा किया कि हम साथ में परिवार की तरह फिर रहेंगे। जब डॉक्टर ने अस्पताल में पिताजी से कहा कि अब कुछ करने की बाकी नहीं, पिताजी ने हम सभी को पूरे विश्वास और निडर से पूछा, क्या इस कमरे में कोई है जो कैसे उधार को योजना कर सकता है? कुछ ही नहीं। हमने उत्तर की योजना के कोई तकलीफ नहीं और उसने माता पिता के आभारी हैं कि जो हमें सभी विश्वास सिखाया कि इस योजना की। मैं उन सब से बातें कर रहा हूँ जो झेल रहे हैं, सब जो सुख में है, सब जो भी सामना कर रहे हैं। ये आगे चलकर मुसीबतों का या लड़कर अपने जिंदगी में सामना करने का मेरे संदेश सभी के लिए जो चिंते हैं या घबराते हैं। मेरे संदेश मगर इस एक गूंज है अतल शांति का। एक पिता अपने बच्चे को जो दुनिया के बनने में था, स्मरण रखना कि तुम्हें अपने उद्धारकर्ता जो परमेश्वर का पुत्र मसीह है उसके चैतन पर अपनी नेव बनाना है, जिसके जब शैतान अपनी प्रबल हवा से झड़ों को हल बलवान अपने सभी और भीषण आंधी को तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होगा, खेत क्योंकि तुमने अपने विश्वास को बनाया है यीशु मसीह के ऊपर, जो ऐसा है जो कभी नहीं टूटेगा। मैं उसके बारे में गवाही देता हूँ कि ये दुनिया की प्रजी हासिल किया है कि वो हमें कभी नहीं भूलेगा वो या छोड़ेगा। मैं ये गवाही देता हूँ कि जो उसके आदेश को मांगने उनके विश्वास और आशा बढ़ेगी, उनके शक्ति मिलेगी सारी जिंदगियों की मुसीबतों पर प्रजीत हासिल करने के लिए। वो ऐसी शांति जो अनुभव करेगा जो सब हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Brothers and sisters,
भाइयों और बहनों, 6 महीने पहले मैंने महासम्मेलन के पुरोहित की सभा में पिताओं और पुत्र से बातें की। जैसा हम तुम शायद अपेक्षा करोगे, मेरी 5 पुत्रियां 24 नातिनों और सदा संभारण में बढ़ती हुई परनिता नातिनों ने बराबर ध्यान के लिए मांग किया था। तो आज मैं गिरजा के माताओं और पुत्रियों से मुख्य रूप से बातें करूंगा। माता और पुत्रियां एक दूसरे की मदद में एक खास भूमिका निभाते हैं। लगभग एक सदी पहले गिरजा के महिलाओं से बातें करते हुए प्रधान जोसेफ स्मिथ ने कहा, वो तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम्हें दुनिया की महिलाओं अगुवाई करें, ये तुम्हारे लिए है कि तुम जो कुछ प्रशंसा के लायक है, सब कुछ जो ईश्वर को पसंद है, सब कुछ जो ऊपर चाहते उसमें दुनिया की महिलाओं के स्वागत करो और मनुष्य के बच्चों के लिए साफ करने लायक है। बहनों, हम तुम्हारे भाई वो नहीं कर सकते जो दुनिया के बुनियाद से पहले से तुम्हें दिव्य रूप से करने के लिए चुना गया है। मैं ये समझता हूँ कि तुम में से कुछ जवान लड़कियों के पास माँ नहीं है जिसके साथ तुम विषय पर बातें कर सकती हो, और तुम में से कई महिलाओं के जवान में अभी पुत्रियां नहीं है, मगर क्योंकि सभी महिलाओं के अपने दिव्य स्वभाव में दोनों सहज योग्यता और माता की प्रबंधकारता है होती है, जो कुछ मैं कहने वाला हूँ वो बराबर नानियों मौसियों बहनों सैतली माताओं सासों नेताओं और अन्य सलाहकारों पर लागू है। जवान महिलाओं, तुम्हारी माए तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो तुम में आने वाली पीढ़ी के वादे को देती है। जो कुछ तुम करते हो, जो कठिनाइयों से तुम विजय पाती हो, उन्हें उससे पवित्र आनंद मिलती है, और उसी तरह तुम्हारे चिंताएं और दिल के पीड़ा उनकी चिंताओं और दिल के पीड़ा है। आज मैं तुम जवान महिलाओं को कुछ सुझाव देने चाहता हूँ, और फिर मेरे पास कुछ विचार है जो मैं माताओं के साथ बता सकता हूँ। ये बदकिस्मती से बहुत सरल है नरितव को उदाहरणा द्वारा उछलना और मधोना इस आधुनिक समाज में अशालीन अनैतिक असंतुलित महिलाएं रेडियो स्टेशन और टीवी चैनल्स को भर देती है, प्रकृति को पूर्ण रूप से अपना लेती है और पिक्चर में दुखता, जबकि सब कुछ दुनिया में प्रसिद्ध है, प्रोहित پول نے پیغمبرتا سے کہا مصیبت سے بچ سمے کے بارے میں بتایا جو آخری دنوں میں آنے والے ہیں. چوری چوری ستریتیوں جو پاپوں سے دبی ہو اور ہر پرکار کی ابھیلاشاؤں کے وش میں ہو. آج کے پری سنسکرتی اکثر مہیلاؤں کو مورکھ مہتوہین لاپرواہ اور شکتین دکھتی ہے. ایسی چیز کو مت دیکھیے لیکن اپنی ماں کو دیکھیے جو تمہیں اچھائیوں کو سکھلا سکتی ہے. اور اب میرے پیارے جوان مہیلاؤں میں اپنے دل سے گزارش کرتی ہوں کہ تم اندھونک سنسکرتی میں اپنے آپ کے لیے نمونوں اور سلکاروں مت ڈھونڈو. کرپیا اپنے وشواسی ماتاؤں کو دیکھیے تاکہ اس کے نمونے کے پیچھے پیچھے چل سکو. اس کو سنو, وہ شاید بوڑھی ماں نہیں ہوگی سندیشوں کو فون میں بیچنے میں, مگر سب جب دلوں کی بات آتی ہے پربھو کی بات اس کے پاس بہت سارا گیان ہے. کوئی اور انسان اس دھرتی پر اس طرح سے تم پر پیار نہیں کر سکتی جتنا تمہیں وہ مدد کر سکتی ہے اس جوان میں اور ہمیشہ کے لیے. اپنی ماں کو پیار کرو میری جوان بہنوں, اس کا آدر کرو, اس کو سنو, اس پر بھروسہ کرو. وہ تمہارے لیے سب سے اچھا چاہتی ہے. وہ تمہارے آنند سرکشا اور خوشی کے بارے میں چنتا کرتی ہے, تو اس سے اچھا ورتاؤ کرو. اس کے کامیابیوں پر دھیرے رکھو کیونکہ ان کے پاس ہے, ہم سب کے پاس کمیاں ہیں. اور اب میں تم ماتاؤں سے کچھ سوچ بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس ایک پریوارک متر ہے جو کئی بار اپنے وسترت پریوار سے کے سدسیوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں. اس کا پرتمت دھیان ہر سفر کے بعد ہے کہ کتنا زیادہ جوان مہیلا اپنی ماں کی طرح پیش آتی ہے. اگر ماتائیں کرچیلی ہے تو پتریاں بھی ویسی ہے, اور اگر ماتائیں سادھارن ہے تو پتریاں بھی ویسی ہے. اگر ماتائیں چپل پہنے گی اور دوسرے لاپرواہی کے کپڑے پربھو بھوج سبھا میں, تو اسی طرح اس کی پتریاں کریں گی. ماتائیں تمہارے ادھارن تمہارے پتریوں کے لیے بہت ضروری ہے. دنیا بھر کے اتہاس میں ماتاؤں ہمیشہ نیتک آدرش سے ادھیاپکا ہوتی ہے. یہ شکشا شسپن میری شروع ہوتی ہے اور اس کے بچوں کے زندگی بھر ساتھ رہ سکتی ہے. آج ہماری سنستا میں ناریتو اور ماتریتو کو بہوچار سندیشوں کے ساتھ کرتی ہے جو خرطانک اور برائی پوروک غلط ہے. اگر وہ اس سندیشوں کو نبھائیں گے تمہارے پرتیاں پاپ کے راستے پر پتریاں پاپ کے راستے پر چلنے کی شروعات کر سکتی ہے اور خود بھرشٹ ہو سکتی ہے. تمہاری پتریاں شاید سمجھ نہیں پائیں جب تک تم ان سے بتلاؤں گے نہیں. یہ اس سے بہتر جب تک تم انہیں اچھی چناؤ کرنے کو دکھلاؤ گے نہیں. اسرائیل نے ماتاؤں کی حیثیت سے تم ہو اپنی پتریوں کا پہلا بچاؤ کار ریکھا دنیا کے بہکاؤں کے خلاف. اب ماتاؤں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اس سکھ پر دھیان نہیں دیتے جو ہم انہیں سکھلانا چاہتے ہیں. مجھے وشواس کرو میں نے اس چمکیلا نظر کو دیکھا ہے جوانوں کے آنکھوں میں دکھتا ہے جب تم اپنے شکشا کے سب سے اچھے بھاگ پر آتی ہو. میں تمہیں آشواسن دیتا ہوں کہ جب تم ایسا سوچو گے کہ تمہاری پتری تمہاری کسی بھی بات کو نہیں سنتی, وہ تم سے ابھی بھی سیکھ رہی ہے, یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا تمہارا کرم तुम्हारे शब्दों से मिलती है या नहीं। जैसा राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा, तुम क्या करते हो, इतना जोर है कि मैं सुन नहीं पाता क्या कह रहे हो। माताओं अपनी पुत्रियों को सिखलाओ कि ईश्वर के विश्वास पुत्री निंदा के लालची से रहेगी, दूसरे का करने। एक माता पुत्र का रिश्ता है जहां एक पुरोहित सीखती है कैसे पड़ोसन द्वारा पोषण किया जाता है। ख्याल करो बहन, ईश्वर प्रणाम है सभी नीति और धार्मिक शक्ति का। हम उस शक्ति को पा सकते हैं उसे वादा करने से और उन वादाओं को निभाने से। माताओं अपने पुत्रियों को वादे बनाने का महत्व को सिखलाओ और जब उनको दिखलाओ किसी की कैसे उन वादाओं को निभाया जाए कि वो मंदिर जाने के योग्य रखें। इस दुनिया में इसका मतलब है अपनी पुत्रियों से यो संबंधी बातें करो। तुम्हारी पुत्रियां और साथ में तुम्हारे पुत्र और जवान हो रहे हैं और उस दुनिया में जहां झड़ खुले रूप से लफार लापरवाह और बेसोच के संभव को स्वीकार किया जाता है, जबकि वहाँ पर कदम है जो हम अपने घरों और परिवारों में आ सकते हैं। आधुनिक जीवन के गुनाहों ने आंसू के प्रदर्शकता को कम करने के लिए तुम्हें जरूरी है बार बार खुली तरह से पुत्रियों को पढ़ाने के द्वारा इन विषयों के बारे में सच्चाई बतलाओ। उदाहरण के उपासे उसे समझना चाहिए कि कैसे वो कपड़े पहन रहे हैं जो शायद थोड़े छोटे हो। एक विश्वासी ईश्वर की पुत्री का सही मतलब में कभी नहीं झूठा और ना तो कभी जुड़ेगा। वो विचार की माताओं के आदर्श उनके पहनावे से जुड़ा होता है। उन्हें जरूरी है कि वो ये सुनने साफ तौर से और हरदम तुम्हारे हाथों से, और उन्हें जरूरी है सही नमूने से देखना और संगति पूर्वक तुम्हारे अपने व्यक्तिगत स्तर के कपड़ों में। हर युवा वादे जो बनाना और निभाना पसंद करेंगे आत्मा के मौजूदगी और उसकी आवाज को पहचानेंगे। वादाओं को निभाओ, निभाने से वो सीख सकेंगे प्रभु की आवाज को सुनने की और व्यक्तिगत प्रकाशन पाने की। ईश्वर उनकी प्रार्थना को सच में सुनेगा और जवाब देगा। 2010 के लिए म्यूचुअल का विषय है, यह युवा और हम सब पर भी लागू है। बलवान बनो और हिम्मत बांध लो, भय ना कर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ प्रभु तुम्हारे साथ होगा। ये उन्हें सही सलामत मंदिर के आशीर्वादों तक ले जाएगा। ये ख्याल करना कि उन्हें पता है कि वादा को निभाना से ही सुरक्षित रास्ता है, और अगर जरूरी है उन्हें सिखलाओ पश्चाताप करना और साफ अर्जे से रहना। अब अगर इसमें सुनी हुई आवाज हो मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि मैं माता पिता और बच्चों से 3 महासम्मेलन में लगातार बातें कर रहा हूँ। पिछले अप्रैल में मैंने युवा को बतलाया भांडवा दिया कि वो बीते हुए पाठ से सीखे। तुम्हारी जिंदगी कितनी और अच्छी होगी अगर तुम यीशु के महान उदाहरण को विश्वास से निभाओगे।
who have gone before you. How much better your life will be if you follow.
पिछले अक्टूबर में मैंने पिताओं और पुत्रों से पुरोहित सभा में बातें किया और आज ज्यादा माताओं और पुत्रियों से. हर एक उदाहरण में मेरा संदेश अलग था मगर एक जैसा. मैं सोचता हूं कि तुम सुन रहे हो और एक पैटर्न देख रहे हो और वही आवाज को सुन रहे हो संगत में. संदेश जो आखिरी दिनों में आवश्यक है बहुत नाजुक है कि माता पिताओं और बच्चे एक दूसरे को सुने और समझें. मैं उन चीज़ों पर बातें नहीं कर रहा था जो ज़रूरी नहीं. वो तत्व है परमेश्वर के योजना का मुख्य भाग हमारी आनंद खुशी और शांति के लिए. गिरजाघर मदद करेगा जहाँ भी हम सकेंगे. हम वहाँ तुम्हें माता पिता और बच्चों के रूप में मदद करेंगे और बनाएंगे रखेंगे के लिए. मगर घर सबसे ज़रूरी है स्थान है. आज के युवा को परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये हम सब की जिम्मेदारी है. माता पिता के रूप में युवा को विश्वासी नेक आदमी और महिला बनने महिलाएं बनने के लिए तैयार करने के लिए. मैं अपनी सलाह की समाप्ति इस वेशवाणी के साथ करता हूं. जोसेफ फील्डिंग स्मिथ ने कहा था, हमारे संबंध सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है. इस समय जब इसी स्वर्ग जीवन से अलग करते हैं हम समय और आनंद के लिए जाती है. हम संबंध और रिश्ते बनाते हैं जो सिर्फ इस जीवन के लिए नहीं है. कौन है और अंतिम दिनों के संतों का अलावा ये जो सोचते हैं और देखते हैं कि मृत्यु के बाद हम पारिवारिक संस्था में साथ रहेंगे. पिता माता बच्चे हर एक को पहचानेंगे. ये पारिवारिक संस्था एक हो जाएंगे परमेश्वर के महान और संपूर्ण कार्य में और सब तय हुए पूरे समय और आनंद के लिए. परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे पढ़ाने पोषण करने और एक दूसरे को घर के अंदर महान कार्य के लिए तैयार करने के लिए जिससे सभी को करना है. ये मेरा प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन.
How beautiful.
हम टैबरनकल गायक मंडली के आभारी हैं सुंदर संगीत के लिए जो उन्होंने आज सुबह प्रदान की है और उन सभी सबकी प्रार्थी जिन्होंने हमें भाषण दी है. हमारा अंतिम भाषणकर्ता इस बैठक के लिए रहेंगे प्रेजेंट हेनरी बी आयरिंग, प्रधान अध्यक्षता के प्रथम सलाहकार. प्रेजेंट आयरिंग के बाद गायक मंडली गाएगी हाउ फॉर माई फाउंडेशन. प्रार्थना फिर एल्डर एरिक डब्ल्यू कपिश की जो 70 के है द्वारा बोला जाएगी और सम्मेलन टाल दी जाएगी शाम 2 बजे तक. भाइयों और बहनों, हमारे स्वर्ग के पिता हमारी मदद चाहते हैं और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है अपने आत्मिक बच्चों को अपने पास फिर घर लाने के लिए. मैं आज युवकों की बातें करूंगा जो पहले से उनके सच्चे गिरजाघर में है और अपने स्वर्ग के घर लौटने के सीधे और सक्रिय मार्ग पर निकल चुके हैं. वो चाहता है उन्हें छोटे से उम्र में वो आत्मिक शक्ति मिल जाए और उन्होंने हमारी मदद की ज़रूरत है उन्होंने इस मार्ग पर जल्द लाने के लिए कि कहीं वो भटक ना जाए. मैं एक जवान बिशप था जब मैं स्पष्टता से देखने लगा कि प्रभु चाहता है कि हम बच्चों को मजबूत करें जब वो जवान है. मैं तुम्हें एक कहानी बतलाऊंगा एक जवान व्यक्ति को जो कई अन्य लोगों के जैसा है. एक महिला मेरे मेज पर मेरे सामने बैठी थी. वो बातें कर रही थी अपने जीवन के विषय में. वो जब 8 वर्ष की थी उसने बपतिस्मा लिया और गिरजाघर का सदस्य में पुष्टि की गई थी. उसने आंखों में एक भी आंसू नहीं था जब वो उसकी बात की 20 वर्षों के विषय में बतला रहा था. उसने कहा कि पाप का मार्ग शुरू हुआ उन लोगों के साथ रहने के चुनाव से जिसे वो उत्तेजित लोग समझते थी. उसने पहले कुछ दुख महसूस किया और थोड़ा सा दोष, मगर उनके दोस्तों के साथ एक नया एहसास प्रदान करता था अपने का और इसलिए उसका पश्चाताप करने का फैसला कम आवश्यक लगने लगा. जैसे उन आज्ञाओं का गंभीरता बढ़ती गई जिसका वो उल्लंघन कर रही थी खुशहाल अंत घर का अपना कम होने लगा. वो मेरे सामने बैठी थी इसी तरह जैसे वो दुर्गति कहती थी. वो चाहती थी कि मैं उसे पाप के चंगुल से छुड़ा जैसे हो जकड़ी हुई थी, मगर बाहर का सिर्फ एक रास्ता था कि वो यीशु मसीह में विश्वास रखे, एक टूटे हृदय के साथ पश्चाताप करें और इस तरह साफ हो जाए, बदल जाए और प्रभु के पश्चाताप द्वारा मजबूत हो जाए. मैंने उसे अपनी गवाही बयान किया और वो संभव था मगर कहीं ज्यादा कठिन भी उस समय की मिलान में जब उसने विश्वास को आजमाया. इसलिए हम परमेश्वर के बच्चों सबसे अच्छी तरह मदद करते हैं यीशु मसीह और उनके पुनस्थापित सुसमाचार में विश्वास बढ़ाने के रास्ता दिखलाने से जब वो छोटे होते हैं और तब हमें उस विश्वास को जल्द जलाना होता है ऐसे पहले कि वो बुझ जाए. इसलिए तुम और हम मैं आशा कर सकता है लगातार परमेश्वर के बच्चों में से यात्रियों को मदद करने के मौके के लिए उदारकर्ता ने बतलाया है. दूसरों के मदद करने के अगणित मौके होंगे जब उसने संकटपूर्ण यात्रा की चर्चा की थी परमेश्वर के आत्मिक बच्चों को घर ले जाने के लिए. सक्र द्वार से प्रवेश करो क्योंकि वो फाटक चौड़ा है, वो विनाश को ले जाता है और बहुत से लोग हैं जो उसमें से प्रवेश करते हैं. सक्रिय फाटक का सक्रिय रास्ता जो जीवन तक ले जाता है उसे थोड़े लोग ही पाते हैं। अपने बच्चों के जरूरत देकर एक प्रेम स्वर्ग पिता ने सलाह और बचाने वाले को मार्ग में छोड़ा। उसने अपना पुत्र भेजी यीशु मसीह तक सुरक्षित यात्रा संभव और हो और साफ दिखे। उसने प्रधान थॉमस एस मॉन्सन को इस समय में अपना भविष्यवक्ता नियुक्त किया। अपने युवा के समय से प्रधान मॉन्सन ने सिर्फ कैसे मार्ग पर ठीके रहने नहीं सिखलाया, मगर कैसे उन्हें बचाया जाए जो दुख में ले जाया गया है। स्वर्ग पिता ने हमें कई अलग अलग स्थितियों में रखा है मजबूत करने के लिए, और जब आवश्यकता हो यात्रियों को सुरक्षा तक पहुंचाने के लिए हमारे सबसे आवश्यक और शक्तिशाली नियुक्ति है परिवार में। वो आवश्यक है क्योंकि परिवार के पास वो होता है एक बच्चे के जीवन के शुरुआत में, उसके पांव को स्थिरता से स्वर्गीय घर के मार्ग पर रखने के लिए। माता पिता, भाई और बहनों, आजा आजी, मौसी और मामा, ज्यादा ताकतवर, मार्गदर्शक और बचाने वाले बन सकते हैं उस प्रेम के बंधन के जरिए जो परिवार के स्वरूप को बतलाता है। परिवार के पास एक प्रार्थना स्थान है बच्चे के जीवन के पहले 8 वर्षों में। वो शारीरिक वर्षों है यीशु मसीह के प्रश्चित के कारण शैतान अंधेरे का झुंड को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। उन आवश्यक वर्षों में प्रभु परिवारों की मदद करता है। प्राथमिक कार्यकर्ताओं को नियुक्ति करने द्वारा बच्चों को आत्मिक रूप से मजबूत करने के लिए वो आरोनिक प्रवृत्तियों रखने वाले को प्रदान करता है। वो प्रभु बोझ का प्रार्थनाओं में बच्चे उसे वादे को सुनते हैं जो कहता है कि शायद उनके पास परमेश्वर की आत्मा रहेगी, इस कारण उन्हें तैयार किया जाता है बकवाए को द्वार दूर रखने के लिए। गिरजाघर के कई बिशप प्रेरित होता वोट के सबसे मजबूत लोगों को नियुक्त करने के लिए प्रयात्मिक में हर एक बच्चे की सेवा के लिए। वो जानते हैं कि अगर बच्चों को मजबूत किया जाए विश्वास और गवाही द्वारा, उन्हें युवा के वर्षों में कम आवश्यकता होगी। हम सब मदद कर सकते हैं। आजी, नानियों, आजा, नानाओं और हर एक सदस्यों को एक बच्चे को जानता है मदद कर सकता है। इसके लिए उनको आत्मिक में एक औपचारिक नियुक्ति की आवश्यकता नहीं, ना तो उम्र की पाबंदी है मदद प्रदान करने के मौके के लिए। वो बच्चों की सेवा करने कभी नहीं ताकि वो अपने वार्ड की प्राथमिक में सिखलाती थी, अपने खुद की गुजारिश पर जब तक वो 90 वर्ष की हो गई। उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार के सरल सिद्धांतों को सिखाया था, आत्मा के प्रभाव के महसूस किया और पहचाना और उस विश्वास को हासिल करने लगे जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। उन्हें बचाव की कम आवश्यकता थी और वो अच्छी तरह तैयार होता दूसरों के बचाव में जाने के लिए। मैंने प्रार्थना और पवित्र आत्मा में सरल विश्वास की शक्ति है के बारे में सीखा जब हमारे बच्चे छोटे थे। हमारा सबसे बड़ा बेटा ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया था। आत्मा को महसूस करने पर पहचाने और कैसे उनकी मदद पाने का ज्ञान मिल सकता है पर उसे बतलाया। एक शाम मेरी पत्नी उसे एक महिला के घर ले गया जो उसे पढ़ना सिखा रही थी। उसका शिक्षण हमारी आशा से जल्द खत्म हो गया। उसे यकीन था कि वो घर तक का रास्ता जानता था, इसलिए वो चलने लगा। लगभग 1 किलोमीटर जाने के बाद अंधेरा होने लगा। उसे लगने लगा कि वो भी अभी घर से बहुत दूर है। उसे अभी भी गाड़ियों के बत्तियां याद आए जो धुंधली थी उसके आंखों के आंसुओं से जैसे वो बगल से गुजर रहे थे वो एक छोटे बच्चे की तरह महसूस कर रहा था उस यकीन रखने वाले लड़की की तरह नहीं जिसने घर जाना शुरू किया था उसने जाना कि उसे मदद की जरूरत है और वो रास्ता का किनारा छोड़कर कुछ पेड़ों की और गया जो उसे अंधेरे में बहुत अच्छी तरह नहीं देख रहा था जड़ियों में से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी रही थी उसके और आते हुए दो युवकों ने उसे रोते सुना था आने पर उन्होंने कहा क्या तुम तुम्हारी मदद कर सकती है दोते हुए उसने कहा कि वो खो गया है उन्होंने पूछा क्या वो अपना फोन नंबर जानता है जब फोन भेजा मैं बचाने के लिए जल्द से गया आभारी था कि परमेश्वर ने दयालु लोगों को उसके घर आने वाले रास्ते पर रखा था वो विश्वास उसे सुरक्षा तक पहुंचाने और उसे पास पहुंचाने वालों को लाया था इतनी बार कि वो याद भी नहीं कर सकता प्रभु ने बचने वालों को एक पहचान बनाया है अपने राज्य में प्रभु ने अपने चेलों को प्रेरित किया सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रोग्राम्स बनाया तुम दो शक्तिशाली प्रोग्राम्स के बारे में जानते हो जो प्रभु द्वारा दिया गया है एक जवान महिलाओं के लिए जैसे पर्सनल प्रोग्रेस कहती है दूसरा अरोनिक प्रोहितों के रखने वाले को ड्यूटी गार्ड कहते हैं हम प्रोत्साहित करते हैं युवकों की उस उद्भवती पीढ़ी में कि वो अपना चमत्कार देकर महान आत्मिक शक्ति बनने के लिए और जबकि गिरजाघर का भविष्य इनके हाथों में है हम सब जिम्मेदार हैं दोनों प्रोग्राम को बदला गया है मगर उनके लक्ष्य नहीं बदले हैं प्रधान मंसूर ने उसे इस तरह कहा यह जरूरी है कि हम वो सीखें जो हमें सीखना है वो करें जो हमें करना है और वो ही पर्सनल प्रोग्रेस पुस्तिका जो जवान महिलाओं के लिए है इस लक्ष्य को उन्हें लिया स्पष्ट करती है पर्सनल प्रोग्रेस करता है हमें समझने में मदद करने के लिए कि हम कौन है हम इस धरती पर है क्यों आए
हैं
यह पुस्तिका फिर कहती है कि जवान महिलाएं प्रतिबंध बनाए गए वो यह वादा भी करता है जो पैटर्न तुम तय करते हो जब तुम्हें पर्सनल प्रोग्रेस पर कार्य करती हो जैसे प्रार्थना धर्मशास्त्र आदि सेवा तुम्हारी व्यक्तिगत दैनिक आदत बन जाएंगी ड्यूटी टू गॉड प्रोग्राम जो जवान पुरुषों के लिए है अरोनिक प्रोहितों में को मजबूत बनाया गया है और उसे और सरल कर दिया गया है तीनों अरोनिक प्रोहित को पढ़ों के लिए सिर्फ एक पुस्तक होगी यह एक शक्तिशाली औजार है वो जवान पुरुषों के गवाही को बढ़ाएंगी और परमेश्वर के साथ उनके रास्ते को भी वो उनके रिश्तों को मजबूत करेगी उनके माता पिताओं के साथ परिषद के सदस्यों के साथ और जवान पुरुषों और उनके नेताओं के बीच ये दोनों प्रोग्राम भारी जिम्मेदारी डाल देता है जवान लोगों के कोशिशों पर खुद कर जब मैं अपने खुद के युवा हमारे उम्र के बारे में सोचता हूँ मैं नहीं याद कर पाता कि मुझे इतना कठिन चेतावनियों से गुजरना पड़ा था ये प्रोग्राम में समानता बहुत कोशिश और सीखने और आत्मिक अभिवाह के जरूरत है जब मैंने इसके बारे में सोचा मैंने जाना कि इस पुस्तिका के लेख में प्रभु के भरोसा का एक बहुत एक आस कारण है, और मैंने सबूत देखा है कि भरोसा तक से किया गया है। दौड़ाओं में मैंने आरोनिक प्रस्तुतों परिषदों को कार्य करते देखा। परमेश्वर जो चाहता है उसके अनुसार योजनाएं बनाते हैं, फिर जाकर वही करते हैं जिसकी उन्होंने प्रतिबंध ली है। और देखने और सुनने के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि पिताएं, माताएं, नेता, दोस्त और पड़ोसी भी एक सभा में ने आत्मा को महसूस किया। युवकों को उन्नति मिली थी जब वो गवाही दे रहे। जवान महिलाओं के प्रोग्राम में भी वही शक्तिशाली पतन है। जवान महिलाओं में आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए पर्सनल प्रोग्रेस जवान महिलाओं की मदद करती है। उन्हें मदद मिलती है माताओं, आजी, नानाओं और धार्मिक महिला को। उदाहरण से मैंने देखा कैसे माता पिता ने अपनी बेटी को मदद किया अपने लक्ष्य और सपनाओं को पाने में। कुछ दिनों पहले मैंने एक माता को अपनी बेटी के साथ खड़े देखा जब वो अपना जवान महिलाताव के पहचान को पुरस्कार साथ में प्राप्त करा। मैंने प्रभु की स्वीकृति महसूस की। जितना मदद हम इन जवान लोगों को दे सकते हैं, सबसे महान लोग उन्हें एहसास दिलाना कि हमारा भरोसा उन पर है कि वो परमेश्वर के पास घर पहुंचाने वाले मार्ग पर है और वो पहुंच सकते हैं। क्योंकि मार्ग कठिन है और कभी कभी पत्थरों से भरा, वो निराशा महसूस करने भी कभी कभी और गिरेंगे भी। वो अपने लक्ष्यों को लेकर उलझे। ये प्रेरित प्रोग्राम इस संभावना का कम करते हैं क्योंकि वो इस जवान व्यक्ति को पवित्र आत्मा से साथ को आमंत्रित करने के और हासिल करने के ओर ले जाएंगे। सबसे अच्छी सलाह हम जवान लोगों को दे सकते हैं वो है कि वो स्वर्ग पिता के पास लौट तभी सकेंगे अगर उन्हें परमेश्वर की आत्मा द्वारा मार्गदर्शन दर्शाया गया हो और सुधारा गया हो। जब वो हमारे साथ बैठेंगे वो क्या कर रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं, या हम भी पवित्र आत्मा के योगी हो जाएंगे। और अगर हम महसूस करेंगे कि हमें सुधारने वाले सलाह देना है, वो उसमें हमारा प्रेम और परमेश्वर के प्रेम महसूस करेंगे कि जो उदाहरण वो ज्यादा चाहते हैं हमसे है कि हम वो करें जो उन्हें करना है। हमें योजनाएं बनानी है जो सिर्फ इच्छा नहीं मगर वादाएं हैं, और फिर हमें परमेश्वर के साथ किया गया वादों को निभाना है और हमें दूसरों को उन्नत करना है और हमें अपने खुद के जीवन में दिखलाना है वो स्थिरता और लंबे समय का विश्वास जो प्रभु उनसे चाहता है। जब हम ऐसा करते हैं हम उनकी सहायता करेंगे आत्मा से महसूस करने के एहसान की अगर हो संघर्ष करेंगे। वो प्रिय उदारकर्ता और स्वर्ग के पिता के वाणी सुनेंगे, धन्य ही अच्छे और विश्वास योग्य दास, और हम जो उनकी मदद करते हैं खुशहाली की उन शब्दों से को सुनेंगे। मैं गवाही देता हूं कि प्रभु तुमसे प्रेम करता है। परमेश्वर के हर एक बच्चे से ये उनका राज्य पुरोहितों के चाबियों द्वारा पुनर्स्थापित हुआ। जोसेफ स्मिथ द्वारा थॉमस एस्मसन प्रभु का भविष्यवक्ता है। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तुम प्रेरित निर्देशन के अनुसार चलोगे यीशु मसीह के इस सच्चे गिरजे में कि हमारा युवा और हम जो उनकी मदद करते और उनसे प्रेम करते हैं को सुरक्षित में स्वर्ग पिता उद्धारकर्ता के साथ ले जाया जाएगा पवित्र परिवारों और खुशहाली से हमेशा के लिए जीने के लिए यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Our dear Heavenly Father.
हे हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अच्छे कॉन्फ्रेंस के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो संगीत हमने सुना है, हमें प्रेरणा मिली है, और जो बातें हमने सुनी है उससे जो प्रेरणा मिली है, और हम धन्यवाद देते हैं जो हमने महसूस किया है पवित्र आत्मा द्वारा। और हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें हिम्मत दे कि हम इन बातों को निभाएं, और जो हमने महसूस किया है उसको निभाएं, और कि हम अपने आप को बदले और आपकी तरह बने। और हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सुसमाचार के लिए जो आपने हमें भेजा है। पिता, इस ईस्टर के समय हम आपसे चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा द्वारा हमें बतलाए अपने पुत्र के विषय में, जो उन्होंने हमारे लिए किया है, जो बलिदान उन्होंने हमको दिया है, कि आप हमें शांति दे कि हम समझ सके, और जो सच्चाई को ढूंढ रहे हैं आप उनको मिल सके, उन्हें ये सुसमाचार मिल सके। और आपको धन्यवाद देते हुए जो आशीर्वाद आपने हमें दिया है, यीशु मसीह के नाम से हम कहते हैं आमीन।
This has been the first session of the 180th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.